आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। चार तरह के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। वो कौन है? दुष्कृतिन, दुष्कृत। कृत मतलब कोई विशेष कार्य करना। जब दु किसी शब्द के आगे प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो बुरा है। तो दुष्कृत मतलब जो बहुत विशेष बुरे कार्य करता है, बहुत पापी आदमी, जो धर्म में कोई रुचि नहीं रखता। जो कौन है वो व्यक्ति जो भगवान के शरण में नहीं आना चाहते हैं, वो है दुष्कृत। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे चार तरह के दुष्कृत हैं। पहला तो है मूढ़, जो बहुत मूर्ख आदमी है, दिन रात मेहनत करता है, सोचता है कि इसी में मेरी भलाई है, इसी से मेरी प्रगति होगी। दूसरा है नराधम, जो तथाकथित सांस्कृतिक जीवन बिताकर भी वैसे काफी पिछड़ा हुआ है। केवल बाहरी रूप से लगता है कि बहुत सज्जन है, भद्र है, लेकिन है वास्तव में बहुत नीच आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तीसरा है माया या पहर तक ज्ञाना, जैसे बड़े बड़े दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक भौतिक दृष्टि से हैं बड़े बुद्धिमान, लेकिन उनकी बुद्धि हर ली गई है माया द्वारा, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। और चौथा है आसुरम भावम आश्रितः, जिन्होंने असुरी प्रवृत्ति का आश्रय लिया है, जो हमेशा भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान के भक्तों के विरुद्ध हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो जगत के अहित के लिए है। तो ये चार प्रकार के दुष्कृत हैं, चार प्रकार के बुरे लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। हाँ, ये जो तथा बुरे लोग दुष्कृत हैं, हो सकता है कि संसार उनको दुष्कृत नहीं माने, हो सकता है कि समाज की दृष्टि में वो बहुत बड़े आदमी हो, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हो, समाज उनके पीछे पीछे चलता हो, सभी लोग उनका उनके किताब में उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, सभी लोग उनके साथ में तस्वीर छपवाना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं, ऐसे स्वप्न देखते हैं। लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं आ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग दुष्कृत है। तो फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चार तरह के लोग आपके शरण में नहीं आते हैं, तो कौन है वो लोग जो आपके शरण में आते हैं? अर्थात वो किस तरह के लोग हैं जो आपका भजन करते हैं? तो फिर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, और उसका उत्तर क्या है ये इसी श्लोक में है, भगवद गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो आज इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन से लोग हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। तो मेरे पीछे पीछे कृपया दोहराइएगा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम। भूपा द्वारा अनुवाद। हे भारत, चार तरह के सुकृत या पुण्यवान लोग मेरी सेवा करते हैं, और वो है जो आर्त है मतलब पीड़ित है, दूसरा जो धन की कामना करता है अर्थार्थी, तीसरा जो जिज्ञासु है, और चौथा ज्ञानी जो कि परम सत्य के खोज में है। इस तरह से भगवान ने बताया है कि कौन है वो लोग जो उनके सेवा करने के लिए आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः, कौन सा शब्द किया इस्तेमाल? सुकृतिनः। इसके पहले जब हमने बताया था कि चार तरह के लोग नहीं आते हैं, वो कौन से थे? दुष्कृतिन थे, दुष्कृत। और अभी यहां इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वो लोग जो कि भगवान के शरण में आते हैं वो है सुकृत, मतलब जिन्होंने बहुत विशेष कोई कार्य किए हैं, जो बहुत पुण्यवान हैं, जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन बड़े अच्छे ढंग से किया है, जो शास्त्रों के नियमों का पालन कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोग पुण्यवान लोग वो भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। ऐसे पुण्य किए बगैर लोग भगवान की सेवा में नहीं आ सकते हैं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, चतुर्विधा ऐसे सुकृत ने भी अपने अपने पुण्यों के आधार पर इनका विभाजन चार दलों में किया जा सकता है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण इन चार तरह के सुकृतनों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले है आर्तः, दूसरे हैं जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी, और चौथे ज्ञानी। तो थोड़ा संक्षेप में हम चर्चा करते हैं कि ये कौन से हैं चार तरह के लोग जो कि भगवान के शरण में आते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रवचन समाप्त होने को आता है, वैसे वैसे हमारे मन में हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? हमारा नंबर किसमें है, हम कहां पर आते हैं, या थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि हम सब आए हैं ना भगवान कृष्ण के मंदिर में, नहीं तो हम सब यहां नहीं आते, कहीं दूसरे जगह जाते। इतवार के दिन तो बहुत सिनेमा के हॉल खुले हैं, या तो और बहुत कुछ है, सिनेमा टीवी में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, तो यहां पर क्यों आए हैं? तो आप सब सुकृत न है, बहुत पुण्य किया आपने, इसलिए आप सब यहां पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हैं आर्तः, जो बहुत पीड़ित है, बहुत दुख है संसार में। ऐसे व्यक्ति है जो पीड़ित नहीं है संसार में? तो ये आदमी इतना दुखी होता है कि भगवान के पास कोई उनके समस्या का समाधान करने जाता है। कोई बीमारी है, या कोई अदालत का मामला है, या तो फिर और कोई ऐसी समस्या है, भयंकर समस्या जो उसको बहुत हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, बेचारा बहुत दुखी है, तो भगवान के पास आता है और फिर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा रोग कृपया नष्ट कर दीजिए, या ये मेरे जीवन में जो संकट आया है कृपया ऐसे दूर भगा दीजिए, अभी मैं जो पाप कभी नहीं करूंगा। तो इस तरह की ऐसी भावना लेकर कई लोग भगवान के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं उनकी। फिर दूसरे तरह के लोग हैं जिज्ञासु, जिनकी थोड़ी बहुत जिज्ञासा है, ये क्या है, ये मंदिर में क्या चलता है, ये आत्मज्ञान ये सब क्या है, ये भक्ति मार्ग क्या है, चलो जाके देखते हैं। तो थोड़ी बहुत इच्छा है उनको जानने के लिए, उत्सुकता होती है, चलो जाके देखते हैं। इस तरह से वो भी किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, अर्थ अर्थी मतलब जिसको कोई धन चाहिए, कोई भौतिक कामना की पूर्ति करनी है उसको, अच्छे पति चाहिए, अच्छे पत्नी चाहिए, कोई जमीन चाहिए, कोई बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोई पदवी चाहिए, मंत्री होना है, उसको करोड़पति बनना है, या ऐसे कोई कामना रहती है, इसको लेकर वो भगवान के पास आता है। हे प्रभु, एक बार कृपया मेरे को वो एक लॉटरी का टिकट दिला दो, बाद में मैं आपके शरण में रहूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। या कभी कभी, हे प्रभु हमारा व्यवसाय बहुत बुरा है, कृपया व्यवसाय में कुछ हमें मदद कीजिए। या कोई कहता है, हे प्रभु हमको बहुत सुंदर बनाइए। ऐसे अलग अलग कामना लेकर लोग भगवान के पास आते हैं, इनको अर्थार्थी कहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो परम सत्य के खोज में है। और वैसे तो थोड़ा बहुत ज्ञान उनको है, शरीर और आत्मा का अंतर मालूम है थोड़ा, लेकिन इतना ही है कि सेवा भावना भगवान के प्रति ज्यादा विकसित नहीं हुई है। और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, बुद्धिमान है, ज्ञानी। ये चार तरह के लोग हैं। इनमें से ये जो पहले तीन तरह के लोग हैं, इनको सकाम भक्त कहते हैं। सकाम भक्त मतलब वो कुछ भौतिक चीज चाहते हैं अपने सेवा के बदले में, इसलिए उनकी भक्ति स्वार्थी है, कुछ चाहते हैं वो। और ज्यादातर ये गृहस्थ आश्रम में पाया जाता है। और चौथा जो है वो साधारणतः जो ज्ञानी होते हैं वो निष्काम होते हैं, और ज्यादातर ये सन्यासियों के लिए होता है। तो पहले तीन अन्य लोगों के लिए जो कि सकाम भक्ति करना चाहते हैं, और दूसरा निष्काम जो कि ज्यादातर सन्यासी लोग करते हैं। वैसे पहले तीन तरह के लोग जो हैं उनकी भक्ति मिश्रित कहलाती है। मिश्रित मतलब जानते हैं ना, मिक्स, उसमें मिश्रण है। उनकी भक्ति में कोई ना कोई भौतिक चीज का मिश्रण है। जो आर्तों और अर्थार्थी होते हैं उनमें तो साफ जाहिर है, ये इसको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। मतलब उनके भक्ति में कोई भौतिक कामनाएं भी हैं, तो उनका भक्ति जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसमें थोड़ा मिलावट हो गया है। जैसे अभी रेशन की दुकान में किसी चीज में वो जो मिलावट करते हैं ना, तेल में, इसमें, उसमें, तो यहां भी भक्ति में मिलावट है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी भक्ति की भावना है प्रधान। वो भक्ति करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, करता भी है, लेकिन शुद्ध नहीं है भावना। और जो चौथा तरह का आदमी है, ज्ञानी, वो निष्काम है लेकिन फिर भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके मन में भी ऐसे मोक्ष की कामना है। वो भी भगवान में चाहे लीन होना चाहता है, वो भी मुक्ति चाहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये चारों जो तरह के लोग होते हैं वो नौसुखिया भक्त कहलाते हैं। मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वो पूरी तरह से ऊंचे से ऊंचे भक्ति को प्राप्त नहीं कर चुके हैं, लेकिन धीरे 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 से वो आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर आर्तो शब्द जब इस्तेमाल किया, मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है, और उसके तुरंत बाद अर्थार्थी शब्द नहीं इस्तेमाल किया भगवान ने, उसके बीच में जिज्ञासु शब्द डाला है। क्यों? क्योंकि जो आर्तो और अर्थार्थी हैं, मतलब जो पीड़ित व्यक्ति होता है और जो धन की कामना करता है, भोग की कामना करता है, ये दोनों तरह के लोग जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और अगर सेवा में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी प्रगति होती है भक्ति में, और फिर वो जिज्ञासु की अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर जिज्ञासु की अवस्था में आकर पूछताछ करते हैं, चलो मैं कृष्ण की सेवा के लिए आया, मंदिर में आया, भक्तों के संग में तो आया, अभी मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, लेकिन चलो देखते तो है ये भक्ति है क्या, ये लोग प्रवचन में, कीर्तन में, किताबों में कहते क्या है, करते क्या है। अगर कोई व्यक्ति आर्तो है, अर्थार्थी है, भगवान कृष्ण के पास आता है लेकिन जिज्ञासु की अवस्था में नहीं पहुंचता, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, आत्मा क्या है, ये लोग कहाँ हैं, क्या कहते हैं ये लोग, ये जिज्ञासा अगर उसके मन में नहीं हुई तो फिर अपनी इच्छा की पूर्ति होने के बाद वो भगवान कृष्ण के चरण को छोड़ के चले जाएगा। आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, धनम देहि रूपम देहि, मिल गया, चले जाता है। लेकिन अगर इन चीजों को प्राप्त करते समय अगर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, फिर वो टिकेगा, फिर जिज्ञासु बनेगा, फिर उसे आगे बढ़ने की संभावना होती है। इस तरह से ये चारों तरह के लोग धीरे 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 से भक्ति करते 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 आगे प्रगति करते हैं। लेकिन ये मिश्र भक्ति होने के नाते अभी तक उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, उसको बहुत कुछ आगे भक्ति करनी है शुद्ध भक्ति में पहुंचने के लिए। शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है यह व्यक्ति? दो तरह के भक्ति होते हैं। एक को कहते हैं मिश्र भक्ति, जैसे अभी वर्णन किया, इन चार तरह के लोग मिश्र भक्ति करते हैं। और दूसरा है शुद्ध भक्ति, या केवला भक्ति, या अकिंचना भक्ति, या उत्तमा भक्ति, मतलब सबसे श्रेष्ठ भक्ति। तो वो श्रेष्ठ भक्ति वो हमारा लक्ष्य है। तो ये चार तरह के लोग अगर केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में टिके रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो आज नहीं तो कल फिर वो उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो कि शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति या उत्तमा भक्ति है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने परिभाषा की है उत्तमा भक्ति की। कोई बता सकते हैं वो श्लोक? कई बार रविवार के कार्यक्रम में 4-5 महीने पहले इसके बारे में विस्तार में चर्चा की गई थी। कौन सा है वो श्लोक? हाँ, बिल्कुल सही। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, वो क्या है? वो भक्ति है जिसमें भगवान की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्य, और जिसमें कोई मिश्रण नहीं है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। मिश्र भक्ति नहीं है ये, जो भी मिश्रण है वो निकल चुका है, शुद्ध हो चुका है। अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भावना से वो सेवा की जाती है भगवान की, प्रतिकूल भावना से नहीं। जैसे कंस भी 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता था, शिशुपाल भी 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता था, लेकिन उनको भक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने जो स्मरण किया उस स्मरण को भक्ति नहीं कहते हैं, लेकिन जो प्रहलाद ने 24 घंटे स्मरण किया भगवान का, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो दोनों के भक्ति में क्या अंतर है? बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे 24 घंटे, बल्कि शायद ऐसा भी कहा जा सके कि कंस का स्मरण बहुत तीव्र था, लेकिन फिर भी प्रहलाद भक्त कहलाते हैं, कंस नहीं। कारण यह है कि प्रहलाद का जो स्मरण है वो प्रेममय था, वो श्रद्धा भावना से था, अनुकूल भावना से था। परंतु कंस, शिशुपाल जैसे जो असुरी वृत्ति के लोग हैं, उनका स्मरण द्वेष, भय, ईर्ष्या इत्यादि से उत्पन्न था, प्रतिकूल भावना से। इसलिए उनके स्मरण को भक्ति नहीं कहते हैं। तो यह है उत्तमा भक्ति, जिसमें भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं, ज्ञान कर्म योग ये योग वो योग का कोई मिश्रण नहीं, जिसमें अनुकूल सेवा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति को उत्तमा या केवला या शुद्ध भक्ति कहते हैं। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें भी प्राप्त करना है इस स्तर को। तो ये चार तरह के लोग उस स्तर को नहीं पहुंचे हैं अभी तक, वो अभी तक मिश्र भक्ति के स्तर में हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते आशा है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन निश्चित नहीं है। जैसे हमने बताया, अगर आर्तो और अर्थार्थी जिज्ञासु के स्तर में नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो आगे बढ़ेंगे नहीं, कृष्ण को छोड़कर चले जाएंगे। उसी तरह से जिज्ञासु अगर उसके जिज्ञासा को आगे नहीं बढ़ाएगा, ज्ञानी के स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तो वो भी कृष्ण को छोड़कर चले जाएगा। थोड़ी बहुत उसकी जिज्ञासा की भावना तृप्त हो गई, चलो हमने देखा ये लोग क्या हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, हाथ ऊपर करके नाचते, चलो देखते हैं, उसने देख लिया, संतुष्ट हो गया, चले गया। तो हालांकि ये चार तरह के लोग आते हैं, तो वो कौन सी चीज है जिससे कि ये चार तरह के लोग मिश्र भक्ति के स्तर से चढ़ते 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 शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकेंगे? वो है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग। भक्तों के संग से ही ये नौसुखिया भक्त महान भक्त हो सकते हैं, शुद्ध भक्त हो सकते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि होए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का लव मात्र भी, क्षण मात्र भी संग किया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो और ज्यादा से ज्यादा ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो कितना लाभ होगा हमारा। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का एक क्षण मात्र संग इतना मूल्यवान है कि इसकी तुलना मोक्ष से नहीं की जा सकती, स्वर्ग के प्राप्ति से नहीं की जा सकती। तो इस पृथ्वी लोक के जो भोग ऐश्वर्य हैं, इसकी तो क्या, इसके तो क्या कहना, ये तो कोई कीमत नहीं है इन चीजों की। मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के एक क्षण का संग भी इतना मूल्यवान है, क्योंकि ऐसे भक्तों के संग से हमारे लिए भगवान के धाम का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि शुद्ध भक्तों के पास ही भगवान के धाम में प्रवेश करने की चाबी रहती है, नहीं तो हम ठोकर मार के दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं जा सकते भगवान के धाम में। वहां प्रेम की चाबी चाहिए, शुद्ध भक्ति की चाबी, नहीं तो उतना बड़ा ताला रहता है वैकुंठ में। तो इस तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से ये चार तरह के लोग शुद्ध हो सकते हैं, और अपने स्तर से ऊंचे उठकर अपने पुरानी भावना को भूलकर वो भक्ति, शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। अभी इन चारों तरह के लोगों के बारे में हम सुनेंगे, थोड़ा उदाहरण लेंगे, हर एक श्रेणी का एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, आर्तः मतलब जो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में भगवान के पास आता है, इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमद् भागवत से किसी को मालूम है? ये मत बोले हमारा पड़ोसी, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत का कोई उदाहरण नहीं, ध्रुव महाराज इस श्रेणी में नहीं आता। गजेंद्र, गजेंद्र का नाम सुना है ना आपने? गजेंद्र हाथियों के राजा थे, त्रिकूट पर्वत में रहा करते थे, और बहुत सारे हाथी उनके साथ में थी। नेता था वो, बड़ा शक्तिशाली नेता था, और एक बार अपने हाथियों के झुंड के साथ रमण करते करते जंगलों में, वनों में, वो एक नदी के पास या तालाब के पास आया। आप जानते हैं कि हाथी वो पानी में स्नान करना, क्रीड़ा करना बहुत पसंद करते हैं, फिर अपने सूंड से पानी लेकर छिड़काते हैं। तो फिर गजेंद्र भी अपने साथियों के साथ में यहां पर आए और उस तालाब में क्रीड़ा करने लगे। उस तालाब में एक मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया अपने दांतों में, और फिर बाकी सारे हाथी भाग गए जमीन के ऊपर। और फिर दोनों शक्तिशाली थे, मगरमच्छ और गजेंद्र, दोनों के बीच में लगा धुआंधार युद्ध हुआ, एक दूसरे को वो परास्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों की शक्ति बिल्कुल बराबर, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था। और इसी तरह से युद्ध चलता गया, कितने समय के लिए? 1000 साल। और उस समय कोई नहीं आ पाया गजेंद्र की मदद के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि हाथी जो होता है वो पानी का जानवर नहीं होता, वो जमीन का जानवर होता है, और जो मगरमच्छ है वो पानी का जानवर है। तो पानी में मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसका स्वाभाविक वातावरण था वो, लेकिन गजेंद्र के लिए ये स्वाभाविक वातावरण नहीं होने के कारण वो कमजोर होता गया। हालांकि 1000 पूरे वर्ष उसने युद्ध किए, लेकिन 1000 वर्ष समाप्त होने के बाद उसे लगने लगा कि मेरी शक्ति अभी कम होती जा रही है। उसने अपने साथियों की ओर देखा जो कि तालाब के तट पर खड़े हुए थे आंसू भरे आंखों से, और उन्हें बोला कुछ करो। बोले क्या करेंगे, पानी में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस छोटी सी घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी भी यही हालत होने वाली है, एक दिन होने वाली है ना, कब, मृत्यु के समय हमारे पास में हमारे प्रिय सारे लोग खड़े रहेंगे और हम उनको आंखों से बताने का प्रयास करेंगे। आप सब तो नहीं करेंगे, आप कृष्ण भक्त हैं तो आप तो जानते हैं, आप तो मृत्यु से डरते नहीं हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने डॉक्टर को, वकील को, इसको उसको बुलाएंगे, भाई कुछ करो, कुछ मदद करो, हमें जाना नहीं है, अभी हमको इस संसार में रहना है, हमें कितने योजनाएं और हैं, अभी फैक्ट्री खत्म नहीं हुआ, अभी वो लॉटरी अभी तक नहीं जीता, और कल टीवी का कार्यक्रम देख के मैं जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी अतृप्त कामनाएं होती हैं और आदमी जाना नहीं चाहता है, और अपने सगे संबंधी इत्यादि उनकी ओर देखता है, कुछ करो, मदद करो, लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से गजेंद्र को भी कोई नहीं मदद कर पाया। वैसे ही युद्ध करते 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 इस हालत में आ गया कि उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब ये गजेंद्र राजा जो हैं, इनके पूर्व जन्म में वैसे एक राज ऋषि थे, बड़े राजा थे, साथ साथ ऋषि भी थे। तो उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया था और वो वन में गए थे तपस्या करने के लिए, और वहां उन्होंने सुंदर प्रार्थना स्तुति अर्पण की थी भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि अगस्त ऋषि, उन्होंने अपराध कर दिया जाने अनजाने में, और अगस्त ऋषि ने उनको शाप दिया कि तुम्हारी जड़ बुद्धि है, तुम एक जड़ पशु बन जाओ अगले जन्म में। तो हाथी का शरीर मिल गया। लेकिन क्योंकि उस जन्म में उन्होंने बहुत भक्ति की थी, भगवान की सेवा की थी, प्रार्थना अर्पण की थी, तो इस समय भगवान की कृपा से उनको वो प्रार्थनाएं याद आ गई, और फिर उन्होंने वही प्रार्थनाओं को बोलना शुरू कर दिया। भगवान श्री नारायण के प्रति चरण कमलों में सुंदर प्रार्थनाएं बोलने लगे, उनके शरण में गए। बहुत लंबी प्रार्थना है उनकी, और इस प्रार्थना में कहने लगे कि आप ही सबसे महान है, भगवान का गुणगान करने लगे और भगवान की कृपा याचना करने लगे। भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जब भक्त पीड़ित अवस्था में उनको पुकारते हैं तो अवश्य उनके पास आते हैं। तो गजेंद्र की पुकार सुनकर तुरंत भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर वहां पर चले आए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि गजेंद्र वहां है, बहुत पीड़ित अवस्था में है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उतारा और छोड़ दिया ऊपर से ही आकाश में स्थित होकर ही। उधर जब गजेंद्र ने विष्णु भगवान को आते हुए देखा तो उस तालाब से उन्होंने अपने सूंड से कमल पुष्प उठाया और भगवान को अर्पण किया यूं, और भगवान ने उस भेंट को स्वीकार किया और सुदर्शन चक्र ने आकर उस मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया, और फिर भगवान ने गरुड़ के ऊपर सवार होकर गजेंद्र को जल से बाहर निकाला। और जिस मगरमच्छ को वास्तव में उन्होंने मारा था भगवान ने, वो एक स्वर्गलोक के निवासी थे जिनको भी एक शाप मिला था। तो भगवान के हाथों द्वारा जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको अपना आदि रूप फिर से मिल गया, और फिर भगवान को नमस्कार करके वो स्वर्गलोक वापस चला गया। फिर गजेंद्र को भगवान श्री हरि ने इस तरह से बचाया। इस प्रसंग को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, काफी प्रसिद्ध है ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में। तो हम देखते हैं कि इस अवसर में गजेंद्र भगवान के पास पीड़ित अवस्था में आए और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। आगे चल के भगवान की बहुत भक्ति की और गजेंद्र शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में चले गए। दूसरा उदाहरण यहां है और वो है अर्थार्थी का लेंगे। अर्थार्थी मतलब जो धन की कामना या भोग की कामना, भूमि की कामना या इस संसार का कोई ऐश्वर्य उसकी कामना करता है। तो थोड़ी देर पहले किसी ने ध्रुव महाराज का नाम लिया। ध्रुव महाराज एक अच्छा उदाहरण है अर्थार्थी के लिए। आप वो कथा जानते हैं कि ध्रुव महाराज जब केवल 5 साल के बालक थे, अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी गोदी में पहले से ही और एक बच्चा था जो कि महाराज उत्तानपाद के दूसरे रानी सुरुचि का पुत्र था, जिसका नाम था उत्तम। जब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव वो भी राजा उत्तानपाद की गोदी में चढ़ने जा रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया और ध्रुव महाराज को कटु शब्दों में टोक दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ इस गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें वहां बैठना है उस सिंहासन के ऊपर, तो तुम्हें इस शरीर को त्यागना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुम यहां बैठ पाओगे। तो सबके सामने इस तरह से ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, क्षत्रिय खून उनमें बह रहा था, उनको बहुत बुरा लगा और वो अपनी माँ के पास रोते रोते गए। माँ ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता उस रानी से, सुरुचि देवी से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी की बात सुनते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो कि मेरे पिताजी तो क्या, मेरे दादाजी के राज्य से भी बड़ा हो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। तो माँ ने कहा मैं थोड़ी दे सकती हूँ, मैं तो, मेरे पास तो इसके लिए उपाय नहीं है, तो कौन मेरे समस्या का समाधान कर सकता है, केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान वन में मिलेंगे, हमने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं भगवान की खोज में, तो मैं भी जाता हूँ। तो फिर सुनीति देवी जो कि ध्रुव की माता थी, उन्होंने आशीर्वाद देकर ध्रुव को जंगल में भेज दिया। इतनी निष्ठा थी, इतना दृढ़ विश्वास था ध्रुव को, वो जंगल में चले गए। रास्ते में ऊपर से भगवान नारायण वैकुंठ से देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये क्या हो रहा है, ये छोटा बच्चा जंगल में जा रहा है अपने महल को, राज दरबार को छोड़कर मेरी प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो वो हंसे, तो लक्ष्मी देवी नारायण की सेवा कर रही थी, पूछा कि क्यों हंस रहे हैं, बोला नीचे बहुत दूर वो वहां पे पृथ्वी लोक के ऊपर ये बालक ध्रुव, उसको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, तो मुझे प्राप्त करने के लिए वो जंगल में जा रहा है, तो अभी तो मुझे मेरे भक्त को भेजना चाहिए उसके पास, क्योंकि वो मेरे पास आना चाहता है। तो फिर भगवान नारायण ने अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि से कहा कि जाओ जो भी उचित है वो करो, वहां ध्रुव महाराज मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तो नारद मुनि ध्रुव के सामने गए और ध्रुव को बोलने लगे कि ध्रुव तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए जंगल में जाना उचित नहीं है, थोड़ा सा अपमान हुआ, वो 5 साल के बालक के लिए अपमान क्या, सम्मान क्या, मान सम्मान छोटे बच्चे के लिए नहीं होता, वैसे भी इतने सारे जंगली प्राणी हैं, पशु हैं, कभी कभी इतनी ठंडी गर्मी बारिश, कहाँ रहोगे, और वहाँ खाने का कोई ठिकाना नहीं, क्या खाओगे, वहाँ केवल सूखे हुए पत्ते खाने पड़ेंगे, कोई पहनने के लिए कपड़े नहीं, इसलिए अब घर चले जाओ, जब बड़े हो जाओगे तब यहाँ आकर तुम भक्ति करना। तो ध्रुव महाराज ने कहा आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मन में ये भौतिक इच्छा प्राप्त करने की ये इतनी तीव्र है कि मैं आपके उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं अभी, इसलिए कृपया मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा कोई मुझे उपदेश दीजिए, अन्यथा मुझे आगे जाने दीजिए। तो नारद मुनि ने सोचा अपने मन में कितना ये चमत्कार की बात है, इतना छोटा बच्चा लेकिन इतनी निष्ठा, इतना दृढ़ विश्वास कि वो अकेला जाने के लिए तैयार है जंगल में, कोई डर नहीं इस बच्चे को। फिर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया, आत्मज्ञान दिया और सत्युग का महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमें आध्यात्मिक और भौतिक निद्रा से भी जगाता है, उसी तरह से सत्युग का महामंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव महाराज ने जाकर इस मंत्र का जाप किया, तपस्या की और फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने सुंदर स्तुति अर्पण की भगवान को, लेकिन जब भगवान ने पूछा कि ध्रुव मांगो तुमको क्या चाहिए, तो उस समय ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं मांगा, ध्रुव ने बोला, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं आपके पास टूटे हुए कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन अभी आपने मुझे बदले में अनमोल दिव्य रत्न भेंट में दिया है, इसलिए मैं अभी राजपद ये ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहता। तो इससे हम देख सकते हैं कि ध्रुव भगवान के पास पहले तो आए थे एक बड़ा राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, अर्थार्थी, लेकिन भगवान के एक शुद्ध भक्त नारद मुनि की भेंट हो गई भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो भगवान की कृपा से नारद मुनि मिल गए, और फिर नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान मिल गए। और जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, तो ध्रुव महाराज के हृदय में जो भी भौतिक कामनाएं थी वो खत्म हो गई। इस तरह से ध्रुव महाराज ने प्रगति की मिश्र भक्ति के स्तर से शुद्ध भक्ति के स्तर में, उनकी भौतिक कामनाओं को पूरी तरह से उन्होंने त्याग दिया। और एक श्रेणी जो है जिज्ञासु, जिज्ञासु का कोई उदाहरण बता सकता है श्रीमद् भागवत से? कौन ऐसे हैं जो जिज्ञासु थे, जो जिज्ञासा से भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, बोलने के लिए, सेवा करने के लिए आए थे? नहीं, चतुष्कुमार नहीं। जो नैमिषारण्य में एकत्र हुए जो ऋषि मुनि थे, श्रीमद् भागवत सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा था, बराबर है? और उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे, और उन्होंने सब ने ये श्रीमद् भागवत सुना। उस समय वहां पे और एक मुनि थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी, उन्होंने भी अच्छी तरह से इसको सुनकर कंठस्थ कर लिया, क्योंकि उस समय लोगों की बुद्धि ऐसी थी, स्मृति शक्ति थी, तो एक बार सुनकर उनको याद आ गया। श्रुति धर कहते थे, सुन के स्मरण खो जाना। हमारे लिए ऐसे नहीं होता है, नहीं, कलयुग में लोगों की स्मृति शक्ति, बुद्धि बहुत कम है, इसलिए बार बार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी हम याद नहीं रख सकते। लेकिन सूत गोस्वामी श्रुतिधर थे, उन्होंने एक बार केवल इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुना और पूरी तरह से कंठस्थ हो गया उनको। और फिर जब वो भ्रमण करते करते आए नैमिषारण्य, जो कि बहुत पवित्र स्थान है, तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वो जगत के कल्याण के लिए कोई विशाल यज्ञ संपन्न कर रहे थे। ये साधुओं का लक्षण होता है कि वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अपने हित के बारे में नहीं सोचते, जगत के हित के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने बहुत लंबे समय से ऐसे यज्ञ किए थे, लेकिन कोई फल उनको नहीं मिल रहा था, तो थोड़े बहुत भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब सूत गोस्वामी वहां पर पधारे, तो तुरंत उन्होंने सूत गोस्वामी, जो कि वृद्ध भी थे, बड़े विद्वान भी थे, महान भक्त भी थे, उनको आसन दिया और निवेदन किया कि कृपया हमारे संशयों का, हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए, हम कुछ जानना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी आसन पर बैठे, और उनके जो प्रमुख ऋषि थे, शौनक ऋषि, सबसे वृद्ध, सबसे विद्वान उनमें थे, उन्होंने सारे वहां एकत्र ऋषि मुनियों की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कई प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। इनके बारे में आज नहीं चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध में है ये अलग अलग तरह के प्रश्न, जैसे कि मृत्यु के समय व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, वो जानना चाहते थे। पूरी तरह से ज्ञान नहीं था उनको, और पूरी तरह से भक्त भी नहीं थे वो, लेकिन सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हो गए थे सुखदेव गोस्वामी की कृपा से। फिर सूत गोस्वामी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया था, ठीक वही उत्तर जो है सूत गोस्वामी ने दोहराए, जैसे है वैसे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा दूसरी बार कही गई नैमिषारण्य में। पहली बार हस्तिनापुर के पास गंगा के तट पर कही गई और दूसरी बार नैमिषारण्य में, और फिर आगे चल के सूत गोस्वामी के कृपा से ये ऋषि मुनि ये भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिज्ञासु लोग भी हैं वो भी अगर शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो वो भी शुद्ध भक्त भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे श्रेणी के जो व्यक्ति हैं ज्ञानी, उनका उदाहरण कोई दे सकता है? पहले किसी ने कहा था एक नाम थोड़ी देर पहले, चतुष कुमार, चार कुमार। ये जो चार कुमार हैं ये ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्रों में से हैं, लेकिन दिखने में केवल छोटे बालक दिखते हैं, 5 साल के बालक, क्योंकि उनकी इच्छा ही थी कि हमें 5 साल से ऊंचा दिखना नहीं है। क्योंकि बालक जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं, वो कोई राजनीति नहीं करते आपस में, जो आगे है वो सामने है, सामने ही बोलते हैं, पीछे इसका ये बोलना वो करना उसके बारे में ऐसे बोलना ये सब वो नहीं करते, झमेला नहीं करते, सीधे सीधे उनका जीवन होता है। आपने बच्चों को देखा, झगड़ा है तो सामने से झगड़ते हैं, 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, फिर प्रेम से आलिंगन करते हैं। लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं होता है, बड़ों का मन बहुत भयंकर होता है ना, बहुत खतरनाक चीज है ये बड़े व्यक्तियों का मन। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको ये माया में नहीं पड़ना है, हम इसी 5 साल की अवस्था में रहना चाहते हैं। इसलिए दिखते हैं बाहरी रूप से छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, कपड़े नहीं पहनते हैं, और इसी तरह से आकाश पथ से सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, और घूमते फिरते कई बार वो किसी राजा के दरबार में जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, कभी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, कभी ऊपर के लोक में जाते हैं, और उनकी ज्ञान की शक्ति इतनी है कि एक बार वो वैकुंठ के द्वार पे पहुंच गए। वैकुंठ मतलब भगवान नारायण या भगवान विष्णु का धाम। तो वहां जब द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये द्वारपाल खड़े हैं, जय और विजय। उन्होंने रोका, ठहरो, आप नहीं जा सकते अंदर, यहां केवल भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को प्रवेश है। वैसे ये चतुष कुमार ब्रह्मवादी थे, मतलब भगवान कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति उनके हृदय में इतना आकर्षण नहीं था, उनकी भक्ति के लिए इतना आकर्षण नहीं था, लेकिन भगवान के निराकार जो स्वरूप है, वो जो प्रकाश है, ज्योति, ब्रह्म ज्योति, उसके प्रति उनका आकर्षण था। निराकारवादी ज्ञान मार्ग में थे वो पूरी तरह से, वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक स्तर में थे, लेकिन भगवान के अस्तित्व को, उनके सुंदर रूप को, उनकी सेवा के आनंद को अभी तक जाने नहीं थे। लेकिन फिर भी अपनी शुद्धता की वजह से वैकुंठ के द्वार तक तो कम से कम पहुंच गए। लेकिन उधर जब द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोक दिया तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको शाप दिया, अरे ये तो वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब वो जगह जहां ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आपके हृदय में हम देखते हैं कि ईर्ष्या है, क्योंकि आप हमें रोक रहे हो, हम तो अबला छोटे बच्चे हैं, हम ऋषि मुनि हैं, हम भगवान का ही तो दर्शन करने आए हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं, इसलिए हम आपको शाप देते हैं, क्योंकि आपके हृदय में इतनी ईर्ष्या है कि आप नीचे भौतिक जगत में जन्म लोगे और आपको 3 जन्म असुर योनि में बिताने पड़ेंगे। ऐसा भयंकर शाप दिया जय विजय, जो कि भगवान के धाम के द्वारपाल हैं। और उस समय भगवान श्री हरि जो कि अंदर थे, उन्होंने सुना कि दरवाजे में कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, जैसे हम अब अपने घर में बैठे हों और चौकीदार किसी से वाद विवाद झगड़ा कर रहा है तो मालिक बाहर आएगा ना देखने के लिए क्या हुआ क्या हो गया। उसी तरह से भगवान विष्णु भी जल्दी से बाहर आए, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और फिर देखा कि अरे ये चतुष कुमार एक तरफ और यहाँ पे जय विजय दूसरी तरफ, और इतने इतना भयंकर शाप उन्होंने दे दिया है। और पहली बार चतुष कुमारों ने भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया, इतना सुंदर रूप, और भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर, विष्णु का पीताम्बर, उनके गले में वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, उनके कमल नयन, और उनके सुंदर शरीर का रंग, उनका सौंदर्य और सबसे महत्वपूर्ण उनके चरण कमलों में जो तुलसी दल अर्पण किए हुए थे उसका सुगंध वहां के वैकुंठ के मधुर वायु के माध्यम से चतुष्किमारों के नसिकों तक पहुंच गया। उन्होंने सांस लिया, अरे वाह इतना सुंदर सुगंध, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों के तुलसी मंजरी और तुलसी दल अर्पण किए हुए ये सुगंध जब उनके नसिकों में पहुंच गया तो वो भक्त बन गए। क्योंकि भगवान श्री हरि से संबंधित जो भी चीज है उसका अगर हम स्पर्श करेंगे तो उससे हम भक्त बन सकते हैं। इसलिए मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में भी, यहां पर हम भगवान श्री कृष्ण को फूल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं और फिर वो फूल सभी भक्त सूंघते हैं, उसका सुगंध लेते हैं। अच्छी तरह से सांस उसका सुगंध लेना चाहिए क्योंकि हमारे नसिकों को इस तरह से हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा शरीर का हर एक अंग भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमारी आंखों से हम भगवान के सुंदर रूप को देख सकते हैं, हमारे कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं, हमारे जिह्वा से हम भगवान के स्वादिष्ट प्रसाद का सेवन कर सकते हैं, हमारे हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, हमारे पैरों से हम भगवान के मंदिर को आ सकते हैं, भगवान के धाम में प्रदक्षिणा परिक्रमा कर सकते हैं, हमारे शरीर से हम भक्तों को आलिंगन कर सकते हैं, हमारा सर हम भगवान के सामने झुका सकते हैं। इस तरह से शरीर का हर एक अंग हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चार कुमारों ने केवल अपने नसिकों से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में जो तुलसी थी उसका सुगंध ले लिया और उनका निराकारवाद का जो की जो भावना थी वो खत्म हो गई और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की भावना जागृत हो गई। शुकदेव गोस्वामी ने इसके बारे में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि विस्तार में इस लीला का वर्णन करें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान ने फिर सारे समस्या का समाधान कर दिया। और भगवान की वास्तव में ये योजना थी क्योंकि वो चाहते थे अवतार लेने के लिए, और अवतार नीचे लेने के लिए उनको चाहिए था कि कोई नीचे असुर हो जिनके साथ वो युद्ध करें। तो ये जय और विजय आगे चलकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। दूसरे जन्म में वो कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में कौन बने? शिशुपाल और दंतवक्र। वो कृष्ण लीला में आए और रावण और कुंभकर्ण रामलीला में आए। इस तरह से जय विजय इन तीन जन्मों के बाद वैकुंठ वापस लौट के आए। लेकिन उधर चार कुमारों को क्या लाभ हुआ? ब्रह्मवादी से वो शुद्ध भक्त बन गए। जो इस तरह से ज्ञान की अवस्था में स्थित होते हैं, जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान है, भगवान कितने महान है, वो केवल भक्ति के नौसुख्य अवस्था में है। लेकिन भगवान या उनके भक्तों का संग करने के बाद वो शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुंच सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी वो भी और एक उदाहरण है ज्ञानी के। वो भी पहले निराकार में रुचि रखते थे, लेकिन वेद व्यास के शिष्यों के भागवत कथा से, कृष्ण के सौंदर्य के और उनकी कृपा के वर्णन से उनका हृदय पिघल गया और वो भी कृष्ण भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए और आगे चल के उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन दिया। इस तरह से हम जानते हैं कि ये चारों जो लोग हैं वो शुद्ध भक्तों का या भगवान का संग करके वो भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। इस तरह से भगवान के भक्तों का संग का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों तरह के लोग अर्थार्थी, आर्तो और जिज्ञासु, उनको ज्ञानी के स्तर में आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में बताते हैं कि इन सारे चार तरह के लोगों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं रहती है। जो आर्तो अर्थार्थी इत्यादि होते हैं वो अपने भक्ति में, अपनी सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होता है वो कुछ चाहता नहीं है, निष्काम है, और बाकी तीन जो है वो सकाम है। इसलिए जो निष्काम भक्त होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है इन चार तरह के लोगों में से। और जब ऐसे ज्ञान से युक्त होकर वो सतत भगवान की सेवा करने लगता है तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे बहुत प्रिय हो जाते हैं। लेकिन मन में अगर संशय आए, अगर ज्ञानी ये चौथा श्रेणी का जो आदमी है अगर वही भगवान को प्रिय है तो फिर क्या ये पहले तीन तरह के लोग भगवान के प्रिय नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, उदार है सर्व एवैते, ये भी उदार हैं, इनको भी साधारण मत समझो। क्यों क्यों साधारण नहीं समझना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये सुकृत है, कोई साधारण लोग नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत सारे सुकृति किए हैं, पुण्य किए हैं। बल्कि रस्ते में जाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जिन्होंने बहुत सुकृति किए हैं। हालांकि वो भगवान कृष्ण के पास कोई भौतिक इच्छा लेकर आए हैं, फिर भी हमें उनको विशेष व्यक्ति मानना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि मैं उनको तुच्छ समझता हूं। अगर उनके पास ऐसा पुण्य नहीं रहता और अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो क्या करता है? बहुत सारे लोग पीड़ित अवस्था में मंदिर में आते हैं, लेकिन बेलगाम के सारे पीड़ित लोग यहां नहीं आ रहे हैं। बाकी पीड़ित लोग क्या कर रहे हैं? आपका क्या जवाब है? कोई शराब के दुकान में जाता है, कोई कवि बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई और कुछ नशा करता है। इस तरह से लोग पीड़ित होकर अलग अलग चीज करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो सुकृत नहीं है। केवल जो सुकृत है अगर वो अपने पीड़ा का निवारण करना चाहता है तो केवल वही आ सकता है भगवान कृष्ण के पास। उसी तरह से अर्थार्थी जो कुछ धन चाहता है, ये वो कुछ भौतिक कामना उसके हृदय में है, केवल ऐसा व्यक्ति जिसने सुकृति की है वही इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आएगा। बाकी लोग क्या करेंगे? अगर किसी को धन की कामना है, कोई सोचेगा हम बैंक को लूट लेंगे, हम कोई चोरी करेंगे, हम लॉटरी टिकट खरीदेंगे, तो वो अलग अलग तरह से अपने धन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं आएंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा भी अलग अलग तरह के जिज्ञासा लोगों की रहती है। तो इस तरह से केवल वही लोग जिन्होंने सुकृति की है वही यहां पर आ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हालांकि ये बहुत एक इच्छा लेकर आए हैं, लेकिन मैं इनको ऊंचा मानता हूं, मैं उनको उदार व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि कम से कम वो मेरे पास आए हैं। और जब मैं उनको उनकी इच्छा पूर्ण करके देता हूं तो वो खुश हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनकी श्रद्धा बढ़ती है, और फिर आगे वो भक्ति में सेवा करने के लिए, प्रगति करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं भगवान, ऐसे आचार्य बताते हैं कि भगवान सोचते हैं फिर मुझे भक्त वत्सल का पद मिलता है, क्योंकि मैं भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं, भक्त जो भी चाहते मैं उनको दे देता हूं। तो भगवान को भी इसमें फायदा है। इसकी वजह से जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, जो भी इच्छा है पूर्ण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि चलो जो मेरे पास भौतिक इच्छा लेकर आते हैं वो भी उदार हैं, तो हम भी ऐसे पूछते रहेंगे भौतिक इच्छा, भगवान हमको उदार बोलते रहेंगे। नहीं, जो साधारण अभक्त हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी तुलना से देखा जाए तो ये व्यक्ति जो भौतिक इच्छा लेकर भगवान कृष्ण के पास आता है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन इस स्तर पर आने के बाद हमें यहां पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम ज्ञानी हो जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि ये तीन तरह के लोग उदार हैं, फिर भी ज्ञानी मेरे लिए बहुत प्रिय है और मैं वो ज्ञानी को बहुत प्रिय हूं। क्यों? एक भक्ति विशिष्यते, क्योंकि ये ज्ञानी जो है केवल मेरी भक्ति करता है, ज्ञान से युक्त है वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो जानता है कि मैं परम सत्य हूं और मेरी सेवा करना ही जीवन का उत्तम लक्ष्य है, वो इस व्यक्ति को ये मालूम है। इसलिए ज्ञानी मेरे लिए सबसे प्रिय है। और ऐसे जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, अभी तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर को नहीं आया है, अभी तक वो मिश्र भक्ति में है, लेकिन इन चार तरह के लोगों में से सर्वश्रेष्ठ है वो। लेकिन इस तरह से जब वो भगवान की भक्ति करते रहेगा, फिर अगले श्लोक पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, मेरी सेवा करते करते, ज्ञान को प्राप्त करते करते जब बहुत जन्म बीत जाते हैं, तब अंततः उसे समझ में आता है वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है और उनके शरण में जाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, तब वो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। महात्मा मतलब जो अभी शुद्ध भक्त बन गया है। तो ऐसे महात्मा की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण गीता में कई जगह करते हैं, जैसा कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा कौन है? महात्मा वो व्यक्ति है जिसने मेरे दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति का आश्रय लिया हुआ है। इस भौतिक शक्ति का आश्रय नहीं, मेरे आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया हुआ है। भजन्ति अनन्य मनसो, वो अनन्य भाव से, एकाग्र चित्त से मेरा भजन करता है। ज्ञात्वा, ये जानते हुए, भूत आदिम, कि मैं सारे प्राणियों का आदि हूं, उद्गम हूं, अव्यय, और मेरा शरीर नश्वर नहीं है, मैं परम सत्य हूं। इस ज्ञान से युक्त होकर जो व्यक्ति अनन्य भाव से सतत मेरे सेवा में युक्त रहता है, वो महात्मा है। तो ये है शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति, अकिंचना भक्ति, इसके अलग अलग नाम है। तो इस स्तर को हमें प्राप्त करना है। अभी हम इन चार तरह के लोगों में से कौन से स्तर में पड़ते हैं अभी हमें नहीं मालूम, हमें सब अपने अपने मन में ही सोचना है। हो सकता है चारों में से थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर हो, थोड़ा ये भी हो, थोड़ा वो भी हो, थोड़ा ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, हमें केवल भक्तों के संग का लाभ लेना चाहिए। श्री श्री राधा गोकुलानंद यहाँ पर विराजे हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये संस्था का लाभ हमें मिला है, यहाँ भक्तों का संग का फायदा हमें मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कथा सुनने के लिए आना चाहिए, प्रभुपाद ने इतने सुंदर किताबें लिखी हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए, यहाँ आकर अलग अलग तरह की सेवा करनी चाहिए, अलग अलग नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाकर ही भोजन प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं और अंततः एक दिन हम भी शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रश्न टीका टिप्पणी है।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
भगवान तो सब जगतों के मालिक है और भगवान सर्वशक्तिशाली है, तो भगवान को अगर कोई जीव प्राप्ति करने की इच्छा करता है या भक्ति करने की इच्छा करता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो अगर कई बार ऐसे ही कहानी बताई जाती है कि हम ऐसा पूछते हैं कभी भी कि अगर भगवान कृपाल तो है तो फिर सब भक्तों को, सब जीवों को एक ही बार क्यों भगवत धाम में नहीं लेके जाते? तो इसके बारे में कहानी बताई जाती है कि जब नारद मुनि को भगवान ने एक बार ये दिया, छूट दे दी कि जितने जीव हैं उनको लेके आओ हमारे धाम में, तो नारद मुनि ने जब लेके गए जीव तो बहुत सारे अटक गए, मतलब स्वर्गलोक में, जनलोक में वगैरह, और अंत में देखते हैं तो पीछे मुड़ के कि एक भी नहीं था। तो ऐसा बताया जाता है, लेकिन भगवान तो कृपालु हैं, तो भगवान अगर चाहेंगे तो कभी भी किसी भी जीव को लेके जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है?
ये सही है कि भगवान कृपालु है और ये सही है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। ये भी सही है कि अगर भगवान चाहते तो हर एक जीव को उनके धाम में वापस लेकर जाते, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीव नहीं चाहते हैं जाने के लिए, जीव चाहते हैं यही रहने के लिए, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। भगवान ने हमें स्वेच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है इच्छा करने के लिए। क्या हमें भगवान की सेवा करनी है या माया की सेवा करनी है? भगवान पूछते हैं कौन चाहिए, मैं चाहिए या माया चाहिए? तो सारे जीव बोलते हैं माया माया माया, बोले ठीक है माया में रह जाओ। जब जीव बोलने लगता है कृष्ण मुझे कृष्ण चाहिए, ठीक है आ जाओ। तो जितनी तीव्र और शुद्ध हमारी इच्छा है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उतना ही सहायता भगवान हमें देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो लोग सतत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए मार्ग प्रदर्शित करके देते हैं, प्रकाशित करके देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? कृपया गजेंद्र की प्रार्थना या श्लोक गा के सुनाइए, और वह स्कंद अध्याय व श्लोक क्रमांक बताएं, वो तो काफी लंबा है। फिर आपको प्रसाद त्यागना होगा, फिर अगले संडे को कोई नहीं आएगा। लेकिन कभी योग्य समय गजेंद्र की प्रार्थना को हम कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद को आप पढ़ सकते हैं। ये विस्तार में ये लीला वहां पर है, आप प्रभुपाद के ग्रंथों में से आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न, ज्ञानी बनना है कि वहां अटक जाना है? हमें क्या बनना है? शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, हमें इन चारों अवस्थाओं से परे होना है और केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। कम से कम ज्ञान की अवस्था में आना चाहिए, लेकिन और आगे बढ़ के हमें भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। और भक्ति में प्राप्त करने, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की बहुत सेवा करनी चाहिए, और भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं उन लोगों को के ऊपर जो उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। और इस महीने में आपको उनके वाणी का प्रचार करने का अच्छे से अच्छा मौका है, और वो क्या है? भगवद गीता का वितरण। आपको मालूम है कि यह राधा गोकुलानंद मंदिर में इस महीने में बहुत बहुत सारे गीताओं के वितरण करने का संकल्प लिया गया है, 22,000 भगवद गीता इस एक महीने में। कितने सारे लोगों को लाभ हो सकता है, उनको गीता का संदेश उन तक पहुंच सकता है। तो कृपया इस पुस्तक वितरण के कार्य में आप भी भाग लीजिए। कई बार आपको एक साधारण तरीका बताए थे, किसी को याद है? हर एक भक्त को कितना करना है? कम से कम एक दिन में एक गीता, तो एक महीने में 30 गीता। अगर एक कुटुंब में 4 लोग हैं तो कितने गीता हो गए उस एक कुटुंब के लिए? 120 गीता एक कुटुंब में, छोटे से कुटुंब में। तो अगर ऐसे 50 कुटुंब हैं, 100 कुटुंब हैं, तो कितने गीताओं का वितरण हो सकता है? दिन में एक, दिन में एक गीता देना कठिन है? कठिन है कि नहीं? नहीं है। तो आप सब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है। भगवान कृष्ण का उपदेश सबको बांटना, भूरिदा जना, जो लोग इस तरह से भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद के बहुत प्रिय बनना है, तो इस महीने में हमें इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए। खास करके इस महीने में हम ऐसा वितरण करते हैं क्योंकि गीता जयंती का महोत्सव इसी महीने में आता है, जिस दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और यह दिन कब आएगा? अगले ही रविवार को। अगला रविवार एकादशी है, एकादशी के दिवस पर युद्ध हुआ था और गीता का उपदेश हुआ था। तो एकादशी अगले रविवार को है और वही दिन गीता जयंती है। तो यहाँ पर मंदिर में दिन भर कार्यक्रम होंगे, सुबह से लेकर रात तक। और शाम को, जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम रविवार का चल रहा है, फिर प्रसाद होता है, फिर प्रसाद के बाद अगले रविवार को हम सारे गीता का पाठ करेंगे, 18 अध्याय 700 श्लोक। आप सब रहेंगे पाठ के लिए? लेकिन सबने नहीं कहा। तो अगले रविवार पूरे भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो कल अगले रविवार को कृपया ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर बिताने के लिए कोशिश कीजिए। सुबह का कार्यक्रम होगा जैसे हर रोज होता है 9 बजे, फिर भजन वगैरह होंगे, फिर दोपहर का कार्यक्रम जैसे अब चल रहा है, उसके बाद
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radha. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.